ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज श्री शिव गीता स्पिरिचुअल डिस्कोर्स प्रेजेंटेड बाय श्री रजनीकांत चांदवडकर। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
शिव गीता अध्याय 5। श्री सूत जी बोले, इसके उपरांत उस स्थान में एक सुवर्ण का बड़ा रथ प्रादुर्भूत हुआ, जिसके अनेक रत्नों की कांति से सब दिशा चित्र विचित्र हो गई थी। नदी के किनारे की पंक में जिसके चारों चक्र स्थित थे, मोतियों की झालर और सैकड़ों श्वेत छत्र से युक्त सुवर्ण के खूर मड़े हुए चार घड़ों से शोभित मोतियों की झालर और चंदोवे से शोभायमान जिसकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह था, जिसके निकट एक मत्त हस्तिनी चलती थी, जिस पर रेशम की गद्दियां बिछाई थी, पांच भूतों के अधिष्ठात्र देवताओं से शोभित पारिजात कल्प वृक्ष के फूलों की मालाओं से सज्जित मृगनाभि से उत्पन्न हुई कस्तूरी के मदवाला कपूर और अगर धूप की उठी हुई गंध से भौरों को आकर्षण करने वाला प्रलय काल के समान शब्दायमान अनेक प्रकार के बाजों से युक्त वीणा वेणु मधुर बाजे और किन्नरों गणों से युक्त इस प्रकार के श्रेष्ठ रथ को देख कर वृषभ से उतर शिवजी पार्वती सहित वस्त्र की शैया वाले उस रथ के स्थान में प्रविष्टित हुए। उसमें देवांगना श्वेत चमर और व्यजन के चलाने से शिवजी को प्रसन्न करने लगी। शब्दायमान कंकनों की ध्वनि और निर्मल मंजरी के शब्द वीणा वेणु के गीत से मानो त्रिलोक पूर्ण हो गया। तोतो के वाक्य की मधुरता और श्वेत कबूतरों के शब्द से जगत शब्दायमान हो गया। प्रसन्नता से अपने फन उठाए हुए शिवजी के भूषण रूप शरीर में लिपटे सर्पों को देखकर करोड़ों मयूर प्रसन्न हो अपनी चंद्र का दिखाते हुए नृत्य करने लगे। तब शिवजी प्रणाम करते हुए राम को उठाकर प्रसन्न मन से दिव्य रथ में ले आए और अपने दिव्य कमंडलों के जल से सावधान हो आचमन कर रामचंद्र जी को आचमन कराए अपनी गोद में बिठाया। इसके उपरांत रामचंद्र जी को दिव्य धनुष अक्षय तरकस और महापाशुपतास्त्र प्रदान किया और रामचंद्र जी से बोले, हे राम, यह मेरा उग्र अस्त्र जगत का नाश करने वाला है, इस कारण सामान्य युद्ध में इसका प्रयोग नहीं करना। इसका निवारण करने वाला त्रिलोकी में दूसरा नहीं है। इस कारण हे राम, प्राण संकट उपस्थित होने पर इसका प्रयोग करना उचित है। दूसरे समय में इसका प्रयोग करने से जगत का नाश हो जाता है। फिर शिवजी देवताओं में श्रेष्ठ लोकपालों को बुला प्रसन्न मन हो बोले, रामचंद्र को सब कोई अपने अस्त्र प्रदान करो। यह रामचंद्र उन अस्त्रों से रावण को मारेंगे, कारण कि उसको मैंने वर दिया है कि तू देवताओं से न मरेगा। इस कारण तुम सब युद्ध में भयंकर कर्म करने वाले वानरों का शरीर धारण करके इनकी सहायता करो, इससे तुम सुखी होंगे। शिवजी की आज्ञा को शिर पर धर प्रणाम कर हाथ जोड़ देवताओं ने शिवजी के चरणों में प्रणाम कर अपने अस्त्र दिए। विष्णु ने नारायणास्त्र, इंद्र ने ऐन्द्रास्त्र, ब्रह्मा ने ब्रह्मदंडास्त्र, अग्नि ने आग्नेयास्त्र दिया, यमराज ने यम्यास्त्र, निरुति ने मोहनास्त्र, वरुण ने वरुणास्त्र, वायु ने वायव्यास्त्र, कुबेर ने सौम्यास्त्र, ईशान ने रुद्रास्त्र, सूर्य ने सौरास्त्र, चंद्रमा ने सौम्यास्त्र, विश्वे देव ने पार्वतास्त्र, आठों वसुओं ने वासवास्त्र प्रदान किया। तब दशरथ कुमार रामचंद्र प्रसन्न हो शिवजी को प्रणाम कर हाथ जोड़ खड़े हो भक्तिपूर्वक बोले, हे भगवन, मनुष्यों से तो क्षार समुद्र उल्लंघन नहीं किया जाएगा और लंका दुर्ग देवता तथा दानवों को भी दुर्गम है और वहां करोड़ों बलि राक्षस रहते हैं। वे सब जितेंद्रिय वेद पाठ करने में तत्पर और आपके भक्त है। अनेक प्रकार की माया के जानने वाले बुद्धिमान अग्निहोत्री है। केवल मैं और भ्राता लक्ष्मण युद्ध में उनको कैसे जीत सकेंगे? शिवजी बोले, हे रामचंद्र, रावण और राक्षसों के मारने में विचार करने की कुछ आवश्यकता नहीं, कारण कि उसका काल आ गया है। वे देवता और ब्राह्मण का दुख देने रूपी अधर्म में प्रवृत्त हुए हैं। इस कारण उनकी आयु और लक्ष्मी का भी क्षय हो गया है। वे देवता और ब्राह्मण का दुख देने रूपी अधर्म में प्रवृत्त हुए हैं। हे सुव्रत, इस कारण उनकी आयु और लक्ष्मी का भी क्षय हो गया है। उसने राजस्त्री जानकी जी की अवमानना की है, इस कारण तुम उसे सहज में मार सकोगे, कारण कि वह इस समय मद्यपान में आसक्त रहता है। अधर्म में प्रीति करने वाला शत्रु भाग्य से ही प्राप्त होता है। जिसने वेद शास्त्र पढ़ा हो और सदा धर्म में प्रीति करता हो, वह विनाश काल आने पर धर्म को त्याग कर देता है। जो पापी सदा देवता, ब्राह्मण और ऋषियों को दुख देता है, उसका नाश स्वयं होता है। हे राम, किष्किंधा नामक नगर में देवताओं के अंश से बहुत से महाबली और दुर्जय वानर उत्पन्न हुए हैं। वे सब तुम्हारी सहायता करेंगे। उनके द्वारा तुम सागर पर सेतु बांधवाना, अनेक पर्वत लाकर वे वानर पुल बांधेंगे, उस पर सब वानर उतर जाएंगे। इस प्रकार रावण को उसके साथियों सहित मार कर वहां से अपनी प्रिया को लाओ। जहां संग्राम में शस्त्र से ही जय प्राप्त होने की संभावना हो, वहां अस्त्रों का प्रयोग न करना, और जिनके पास अस्त्र नहीं है अथवा थोड़े शस्त्र है तथा जो भाग रहे हैं, ऐसे पुरुषों के ऊपर दिव्यास्त्र का प्रयोग करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। बहुत कहने से क्या है, यह संसार जो मेरा ही उत्पन्न किया है, मैं ही इसका पालन और मैं ही इसका संहार करता हूं। मैं ही इस जगत की मृत्यु का भी मृत्यु स्वरूप हूं। हे राजन, मैं ही इस चराचर जगत का भक्षण करने वाला हूं। वे युद्ध दुर्दम सब राक्षस तो मेरे मुख में प्राप्त हो चुके हैं। तुम निमित्त मात्र होकर संग्राम में कीर्ति पाओगे। इति श्री पद्म पुराणे शिवगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे शिवराघव संवादे रामाय वरप्रदानं नाम पंचमोऽध्यायः। शिवगीता अध्याय छठवा। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवन, आप कहते हो कि मैं ही जगत की उत्पत्ति और पालन करता हूं, इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। स्वच्छ स्फटिक मणि की समान जिनका शरीर और तीन नेत्र तथा मस्तक पर चंद्रमा है, ऐसे आप परिच्छिन्न और पुरुषाकृति मूर्ति धारण किए हो और पार्वती सहित प्रमथ आदि गणों के साथ यही विहार करते हो। फिर तुमने पंचम भूतादि यह चराचर जगत कैसे उत्पन्न किया? हे गिरिजापते, जो आपकी मुझ पर कृपा है तो आप कहिए। श्री भगवान बोले, हे महाभाग रामचंद्र, सुनो, जो देवताओं की भी बुद्धि में नहीं आता, वह से यत्नपूर्वक तुमसे कहता हूं, जिससे तुम अनायास ही संसार के पार हो जाओगे। जो कुछ यह पांच महाभूत, चौदह भुवन, समुद्र, पर्वत, देवता, राक्षस और ऋषि दिखते हैं, चौदह भुवन भू भुव स्वह मह जना तपह सत्यम, यह सात ऊपर के लोक, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल यह सात अधोलोक मिलकर 14 लोक हुए तथा स्थावर जंगम गंधर्व प्रमथ और नाग दिखते हैं, यह सब मेरी ही विभूति है। प्रथम ब्रह्मादि देवता मेरा रूप देने के निमित्त मेरे प्रिय मंदराचल पर गए। प्रथम ब्रह्मादि देवता मेरा रूप देखने के निमित्त मेरे प्रिय मंदराचल पर गए। देवता हाथ जोड़ मेरे आगे स्थित हुए, तब मैंने देवताओं को लीला से व्याकुल चित्त जानकर उन ब्रह्मादि देवताओं का ज्ञान हर लिया। वे तत्काल ही ज्ञान रहित हो हमसे बोले, तुम कौन हो? तब मैंने देवताओं से कहा, मैं ही पुरातन हूं। हे देवताओं, सृष्टि से पहले मैं ही था, वर्तमान में मैं ही हूं और अंत में भी मैं ही रहूंगा। इस लोक में मेरे सिवाय और कुछ नहीं। हे सुरेश्वरो, मुझसे व्यतिरिक्त और कुछ वस्तु नहीं है। नित्य अनित्य भी मैं ही हूं तथा मैं ही पाप रहित वेद और ब्रह्मा का भी पति हूं। मैं ही दक्षिण उत्तर और पूर्व पश्चिम हूं। हे सुरेश्वरो, ऊपर नीचे दिशा विदिशा सब मैं ही हूं। सावित्री, गायत्री, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, त्रिष्ठूप, जगती, अनुष्ठूप और पंक्ति छंद भी मैं ही हूं तथा मैं ही तीनों वेदों में वर्णन किया गया हूं। मैं ही सत्य स्वरूप, माया के विकास से रहित, सब प्रकार शांत, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, आह्वनीय तीन अग्नि स्वरूप हूं। गौ, गुरु में गुरुता, वाणी का रहस्य, स्वर्ग और जगत का पति मैं ही हूं। मैं ही सबसे ज्येष्ठ, सब देवताओं से श्रेष्ठ, ज्ञानियों में पूज्य, सब जलों का पति सागर मैं ही हूं। मैं ही अर्चा के योग्य, षडगुण ऐश्वर्य संपन्न, तेज स्वप्न और उसकी आदि वायु भी मैं ही हूं। मैं ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और श्रेष्ठ अंगीरस अथर्व वेद हूं। मैं ही स्वयं भू हूं। भारतादि इतिहास, ब्रह्म पुराणादि पुराण, कल्प सूत्र, उनका प्रवर्तक बोधायनादि ऋषि नाराशंसी नामक रुद्र तत्व के प्रतिपादक मुख्य तत्व की प्रतिपादन करने वाली गाथा, उपासना कांड, उपनिषद, यह सब मैं ही हूं। तदप्येष श्लोको भवति इत्यादि श्लोक सांख्य योगादि सूत्र व्याख्यान अनुव्याख्यान गांधर्व गान विद्यादि यज्ञ होम आहुति गाय आदि दान के पदार्थ दान देना, यह लोक अविनाशी परलोक, क्षर प्राणी मात्रों के हृदय में वास करने वाला, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह और खग जीवन भी मैं ही हूँ। सब वेदों में गूढ़ भी मैं ही हूँ। निर्जन स्थान वासी भी मैं हूँ। जन्म रहित भी मैं ही हूँ। पुष्कर, पवित्र, सबके मध्य और बाहर भीतर अविनाशी मैं ही हूँ। तेज, अंधकार, इंद्रिय के गुण, बुद्धि, अहंकार और शब्दादि विषय मैं ही हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, उमा, स्कंद, गणपति, इंद्र, अग्नि, यम, निरुति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, भू, भुव, स्वह, मह, जनह, तपह, सत्यम, यह सात लोक, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, प्राण, काल, मृत्यु, अमृत, भूत, प्राणी, यह सब मैं ही हूं। वर्तमान और भविष्य मैं ही हूं। संपूर्ण विश्व सर्वरूप भी मैं ही हूं। ओंकार के आदि और मध्य में भूर भुवः स्वः मैं ही हूं और गायत्री, शीर्ष जपने वाले का विराट स्वरूप भी मैं ही हूं। भक्षण पान कृत अकृत तथा पर अपर मैं ही हूं और सबका आश्रय मैं ही हूं। मैं ही जगत का हित अक्षर सूक्ष्म दिव्य प्रजापति पवित्र सोम देवता अग्राह्यम यानी जो ग्रहण करने में न आवे और सबका आदि मैं ही हूं। मैं ही सबका उपसंहार करने वाला मैं ही पर्वत सागर इत्यादि गुरुवस्तु और प्रलय कालिक अग्नि सूर्यादि तेज इन सब पदार्थों में मैं ही विद्यमान हूं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में देवता और प्राण रूप से स्थित हूं। जिसका शीर उत्तर को और जिसके पाद दक्षिण को और जिसके अंतर अंतर अंतस्थित संयक और जिसके अंतर मध्य में है ऐसा त्रिमासिक साक्षात ओंकार मैं ही हूं। जिस कारण से कि मैं जप करने वालों को स्वर्गादि लोक को ले जाता हूं, पुण्य क्षीण पुरुषों को नीचे ले जाता हूं, इस कारण मैं एक निरंतर नित्य सनातन ओंकार हूं। यज्ञ कर्म में ब्रह्मा नामक ऋत्विक होकर ऋग्यजु और साम के मंत्र ऋत्विजो को देता हूं, इस कारण मैं ही प्रणव स्वरूप हूं। तात्पर्य यह कि यह सब मैं ही हूं। जैसे घृत तैलादि स्नेह द्रव्य मांस पिंड में व्यापित होकर भक्षण करने वाले की सब देह को व्याप्त करते हैं, इसी प्रकार सब लोकों में अधिष्ठान रूप से व्याप्त होकर मैं सर्वव्यापी हूं। ब्रह्मा हरि और दूसरे देव भी मेरा आदि और अंत नहीं जानते, इस कारण से मैं अनंत हूं। गर्भवास जन्म जरा मृत्यु से भरे संसार सागर से मैं भक्तों को तारता हूं, इस कारण मेरा नाम तारक है। जरायुज स्वेदज अंडज उद्भिज इन चार प्रकार के देहों में मैं जीव रूप से वास करता हूं और इनके हृदयाकाश में सूक्ष्म रूप होकर वास करता हूं, इससे मैं सूक्ष्म कहता हूं कहा जाता हूं। महाअंधकार में मग्न हुए भक्तों को उद्धार करने के निमित्त बिजली की समान दीप्तिमान निरुपम तेज रूप प्रकट करता हूं, इस कारण मैं विद्युत स्वरूप हूं। जिस कारण से कि मैं एक ही लोकों को उत्पन्न और संसार करके लोकांतर में पहुंचाता हूं और ग्रहण करता हूं, इस कारण से मुझे स्वतंत्र और एक ईश्वर कहते हैं। प्रलय काल में कोई दूसरा स्थित नहीं रहता, केवल मैं ही तीन गुणों से परे स्वयं ब्रह्म रुद्र स्वरूप सब प्राणियों को अपने में लय करके स्थित होता हूं। जो कि मैं सब लोकों की ईशनी अर्थात सब लोकों को स्वाधीन रखने वाली शक्तियों से स्वाधीन रखता हूं, उन पर सत्ता चलाता हूं, इस कारण सर्वद्रष्टा सबका चक्षु मैं ईशान कहा जाता हूं। मैं स्थिर और चर सब प्राणियों का सदा ईश्वर हूं तथा सब विद्याओं का अधिपति हूं अर्थात सर्व ईश्वर शक्ति संपन्न हूं, इससे मेरा ईशान नाम सार्थक है। मैं सब अतीत और अनागत पदार्थों को आत्मज्ञान से देखता हूं, इसी प्रकार साधन संपन्न पुरुष को आत्मज्ञान रूप योग का उपदेश करता हूं और सब में व्यापने से मैं भगवान ऐश्वर्यवान हूं। मैं निरंतर सब लोकों की उत्पत्ति पालन और संहार करता हूं, इस कारण मुझे महेश कहते हैं। महत पुरुषों में आत्मज्ञान और अष्टांग योग से जो महिमा विद्यमान है और जो सब पदार्थ को उत्पन्न करके रक्षा करता है वह महादेव मैं ही हूँ। मैं ही श्रुति प्रतिपादित एक देव संपूर्ण दिशाओं में वर्तमान हूँ। मैं ही सबसे प्रथम गर्भ में वास करने वाला, गर्भ से निकलने वाला और पीछे उत्पन्न होने वाला हूँ। मैं ही संपूर्ण लोक हूँ और सब दिशाओं में मेरा ही मुख है। सर्वत्र मेरे नेत्र, सर्वत्र मेरा मुख, सर्वत्र मेरी भुजा और सर्वत्र मेरे चरण हैं। मैं ही भुजा और चरणों से स्वर्ग और भूमि को उत्पन्न करता हूँ। केश के अग्रभाग की समान सूक्ष्म रूप हृदय में रहने वाला विश्व व्यापक स्वप्रकाश श्रेष्ठ आत्मस्वरूप मैं ही हूँ। मुझे जो चतुर पुरुष तत्वमस्यादि वाक्यों के ज्ञान से ऐसी उपाधि त्याग कर जीव और ब्रह्म को एकता से देखते हैं, अर्थात एक स्वरूप जानते हैं, वही निरंतर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, दूसरे नहीं। सीपी में जो रजत बुद्धि है यह भ्रम ही है, परंतु रजत के भ्रम का आधार शुक्ति यथार्थ है। उसी प्रकार मेरे स्वरूप में भासने वाला जगत मिथ्या है, परंतु उसका आधार मैं सत्य हूँ तथा एक रूप हूँ। मैं ही यह पंचभूतात्मक जगत धारण किए हूँ, ऐसे मुझे ईश्वर के स्वरूप में जो विवेक करेगा उसको अनंत शांति अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होगी। प्राण का ही अंतर्गत मन है, वहाँ क्षुधा पिपासा और तृष्णा रहती है। इससे शुभाशुभ फल प्राप्ति का कारण जो धर्म अधर्म है उसके भी कारण विषय तृष्णा को छिन्न कर निश्चयात्मक बुद्धि मुझ में अंतकरण लगाकर जो मेरा ध्यान करते हैं उनको निरंतर शांति और मोक्ष सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। जहां वीणा की गति नहीं, जहां मन नहीं पहुंच सकता, इस प्रकार आनंद ब्रह्म रूप में जानने वाले को कहीं से भय प्राप्त नहीं होता। जहां वाणी की गति नहीं, जहां मन नहीं पहुंच सकता, इस प्रकार आनंद ब्रह्म रूप मेरे जानने वाले को कहीं से भय प्राप्त नहीं होता। इस कारण देवता मेरे वचन जो कि आत्म स्वरूप ज्ञान के देने वाले है, सुनकर मेरा नाम का जप करके मेरे ही ध्यान प्रायण हुए। देहांत में वे सब मेरे सायुज्य को प्राप्त होंगे। जो कुछ ये पदार्थ दिखते हैं, यह सब मेरी ही विभूति है। यह सब वस्तु मुझ ही से उत्पन्न है और मुझ ही में प्रतिष्ठित है और अंत में मुझ में ही लय हो जाती है। मैं ही अद्वय ब्रह्म हूँ। मैं ही सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, महान से भी महान। मैं ही विश्वरूप, निर्लेप, पुरातन पुरुष, सर्वेश्वर, तेजोमय और शिव रूप हूँ। मेरे हस्त चरण नहीं और सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी शक्ति किसी के ध्यान में नहीं आती। मेरे भौतिक नेत्र नहीं है तथापि सब कुछ देखता हूँ। कान नहीं है और सब कुछ सुनता हूँ। मैं सत असत सब विचार को जानता हूँ। मैं एकांत स्वरूप हूँ। मेरा जानने वाला कोई नहीं है। सदा चैतन्य स्वरूप हूँ। संपूर्ण वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता और वेद का जानने वाला भी मैं ही हूँ। मुझ में पाप और पुण्य नहीं है। मेरा नाश तथा जन्म नहीं है। मुझे देह, इंद्रिय और बुद्धि का संबंध नहीं है। भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, इनसे मैं लिप्त नहीं हूँ। इस प्रकार से पंचकोशात्मक गुहा में निवास करने वाला निर्विकार, संगरहित, सर्वसाक्षी, कार्य कारण भेद शून्य परमात्मा मैं हूँ। जो मुझको इस प्रकार से जानते हैं, वह मेरे शुद्ध परमात्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। हे महाबुद्धिमान रामचंद्र, इस प्रकार जो मुझे तत्व से जानता है वही संसार में मुक्त होता है, दूसरा नहीं। इति श्री पद्म पुराणे शिवगीतासुपनिषत्सु विभूति योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। शिवगीता अध्याय सातवा। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवन, जो कुछ मैंने प्रश्न किया है वह तो उस प्रकार ही स्थित है। हे महेश्वर, आपने इस विषय का कोई उत्तर नहीं दिया। हे महेश्वर, आपका देह परिच्छिन्न परिमाण अर्थात इयत्ता करने के योग्य है, फिर सब संसार की उत्पत्ति पालन नाश कैसे करते हो? इसी प्रकार आपके अधिकार के पालन करने वाले इंद्र वरुण आदि सब देवता तुम्हारी देह में कैसे रहते हैं? और वे सब देवता और 14 भुवन, यह मैं ही हूँ ऐसा जो आप कहते हैं तो कैसे कहते हैं? अर्थात जब तक उपाधि है तब तक जीव ईश्वर का अभेद संभवित नहीं होता, और जड़ प्रपंच महाभूतों में चेतना का तादात्म्य संभवित नहीं होता। हे देव, आपसे उत्तर सुना परंतु संदेह नहीं जाता, कारण कि चित्त का निश्चय नहीं हुआ। उस संदेह को दूर करने को आप ही समर्थ हो। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, सूक्ष्म वट के बीज में जिस प्रकार महान वट का वृक्ष सदा रहता है और उसी से वह वृक्ष निकल भी आता है, यदि ऐसा न हो तो बताओ वह वृक्ष कहाँ से आता है? इसी प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर से सब भूतों का जन्म पालन और नाश होता है। जिस प्रकार से जल के बीच में बड़ा सेंधे का खंड डालने से वह उसमें विलीन हो जाता है और नहीं दिखता, पीछे जल को अग्नि में औटाने से वह पूर्ववत प्राप्त हो जाता है, अथवा जैसे प्रतिदिन सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता और संध्या समय विलीन हो जाता है, इसी प्रकार मुझसे जगत उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है और मुझ में ही स्थिर रहता है। हे सुव्रत राम, तुम ऐसा जानो। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवन, आपने दृष्टांत से प्रतिपादन किया, परंतु जिस प्रकार दिशाओं के भ्रम वाले को उत्तरादि दिशाओं का भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार मुझे भ्रम हो गया है, वह निवृत्त नहीं होता, मैं क्या करूं? श्री भगवान बोले, हे राम, जिस प्रकार यह चराचर जगत मुझ में वर्तमान है सो मैं तुमको दिखाता हूँ, परंतु तुम उसे देखने को समर्थ नहीं, इस कारण उसके देखने को मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। उस नेत्रों से भय त्याग कर तुम मेरा दिव्य स्वरूप देखो। नरेंद्र वा देवता, इस मेरे तेज स्वरूप को मेरे अनुग्रह बिना चर्म चक्षु से नहीं देख सकते।